हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा श्री श्री रुक्मणि श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी गौरनेता श्री प्रभुपाद की कृपा से पंजाबी बाग मंदिर में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के सातवें अध्याय के अंतर्गत छठे श्लोक के ऊपर आज सत्संग होगा। इस अध्याय का नाम है तृणावंत का उद्धार और भगवान श्री कृष्ण की ये गोकुल की लीलाएं हैं। ये लीलाएं 3.5-4 महीने तक चलेंगी, इसको बाल लीलाएं कहते हैं और ये वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आकर्षण करने के लिए और उसके पोषण करने के लिए हैं। ये भगवान की कुमार अवस्था की लीलाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है और बाल लीलाओं में जो लीला इस वक्त चल रही है, भगवान श्री कृष्ण करवट लिया है, सर को अपने आप पकड़ सकते हैं, 3 महीने के हो गए हैं और जब इस ऐसे बच्चे में अपने सिर को खुद पकड़ने का सामर्थ्य आ जाता है तो फिर बच्चे को गोद में उठा के घर से बाहर ले जाने का संकेत मिलता है, उससे पहले बच्चे को बाहर नहीं निकालते। तो उस बच्चे के शरीर में ठीक तरह से वृद्धि हो रही है, शक्ति आ रही है, तो ऐसे 3 महीने में बच्चे का उत्थान एक उत्सव मनाया जाता है और यशोदा माँ उत्थान उत्सव मनाने जा रही थी और उस उत्सव में बहुत से विशेष रूप से माताएं गोपियां ही आई थी। और जो श्लोक हमने पहले पढ़ा था उसमें माता जी ने स्वयं स्नान किया यशोदा ने, फिर सबने मिलकर कृष्ण का को स्नान कराया। उसको शरीर पहुंचने के बाद गोरचन और तेल आदि लगाया, वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और फिर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को उदारता से दान दिया। और इस बीच में कृष्ण के आँखों में नींद माँ ने देखी तो थोड़ी देर बच्चे को लेते हुए काम कर रही थी, फिर बच्चे को सुलाने के लिए उसके साथ सो गई। कहाँ सुलाने के लिए सो गई, कहा घर से थोड़ा बाहर, क्योंकि घर में सारे मेहमान थे तो घर के आंगन में ही एक लकड़ी का बहुत बड़ा छकड़ा, जैसे बैलगाड़ी जैसा बहुत ऊंचा छकड़ा रखा था, उसके ऊपर बर्तन भी रखे हुए थे तो उसके नीचे बहुत जगह थी और अच्छा सा खटिया के ऊपर मैया साथ में सो गई। बच्चे को जब गहरी नींद आ गई तो यशोदा मैया वहाँ से उठ के मेहमानों का स्वागत करने के लिए आई। तो अब कैसे मेहमानों का स्वागत कर रही है मैया और उस बीच में क्या होता है, ये आज के श्लोक का भाव है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। औथानिक उत्सक मनः मनस्विने समागतां पूजयति व्रजौकसः नैवाश्नोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थि चरणावदक्षिपा औथानिकुत्सक्य मना मनस्विने समागतान् पूज्यति व्रजौकसः नैवाश्नोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थि चरणावदक्षिप्या मनिकौ सक मनः मनस्विने समागतान् पूज्यति व्रजौ कसः नैवाश्नोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थि चरणौ दक्षिपत् औदारोत्सक मना मनस्विने समागतां पूज्यति व्रजौ कसः नैवाश्नोत्वयि सुतस्य रुदन्वा रुदन् स्थानार्थि चरणौ दक्षिपत् शृणोति वास्तं तं सुतस्य स रुदनिस्थानार्थि चरणौ समागतान् पूजयति नैवाश्नोति वैश्वानरस्य वा रुदन्ति स्थानार्थि चरणावकाशः माताजी मनस्विने समागतां पूज्यते व्रजौ कसः नैवार्णोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्थानार्थि चरणौ दक्षिपत् औथाने पुत्सक्य मना मनस्विने समागतां पूज्यति व्रजौ कसः शृणोति नितन्तं सुतस्य सा रुदन् स्थानार्थि चरणौ दक्षिपत् औथानिक। औथानिक का मतलब है बच्चे के करवट बदलने और सर को पकड़ने का उत्सव। औत्सानिक उत्सक मनाहा, बड़े उत्सक उत्साह के मन से मना रही थी यशोदा मैया। कृष्ण के उत्थान उत्सव को बड़ी उत्सुकता के साथ मना रही थी। बोला कैसे पता लगा उत्सुकता के साथ मना रही थी? बोला मनस्विनी है। मनस्विनी का मतलब है उदारता से आने वाले मेहमानों को उपहार दे रही थी, वस्त्र दे रही थी, भोजन खा की सामग्री दे रही थी, उचित गायों का दान कर रही थी। तो इतना उत्साह था, उत्थान उत्सव को मनाने में बहुत उत्साह था। उत्साह वाले मन से कार्य कर रही थी। कैसे पता लगा? बोला मनस्विनी थी। मनस्विनी का अर्थ क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने? बहुत उधार थी, उदारता से वस्त्र भोजन का सामान गाय आदि यथा योग्य लोगों को दान कर रही थी। उत्सुक मना, उत्सुक मना मतलब काम उत्साह से कर रही थी, मन उसका बड़ा प्रफुल्लित था और उदारता से। तो बोला क्या कर रही थी, कर क्या रही थी? समागताम, जो घर में मेहमान पधारे थे, पूज्यति, उनको संतुष्ट कर रही थी। पूज्यति का मतलब उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर रही थी, उनका सम्मान कर रही थी, उनको संतुष्ट कर रही थी। कौन आए थे घर में? ब्रज जाओ कसह, ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले राजा है नंद बाबा, ब्रज के राजा है यशोदा, नंद रानी है, लेकिन वो ब्रजवासियों का उनसे ऐसा प्रेम है कि कृष्ण का उत्सव जितना यशोदा को प्रिय है उतना सारे ब्रजवासियों को प्रिय है। एक कृष्ण की सुरक्षा के लिए, 3.5 साल के कृष्ण की सुरक्षा के लिए सारे ब्रजवासी गोकुल का परित्याग करके और वृंदावन आ गए। क्यों? कि गोकुल में कृष्ण के ऊपर आपदाएं आ रही हैं। कितने सब कृष्ण से प्रेम करते थे, सारे ब्रजवासियों का प्रेम का केंद्र कृष्ण था और उसको सभी अपना मान रहे थे और सभी उस उत्सव में उत्सुकता के साथ भाग लेने के लिए आए थे। और जो आए थे उनका यशोदा मैया बड़े उदारता से स्वागत, पूजन का अर्थ है उनको संतुष्ट करने के लिए जो आवश्यक कार्य थी उसमें लगी हुई थी। और साथ साथ में बच्चे का भी ध्यान रखना था, लेकिन वो काम में इतनी तलीन थी, मेहमानों को संतुष्ट करने में इतनी गहराई से और हृदय से जुटी हुई थी कि इस बीच में नैवा शृणोद, नहीं सुना, और इव बीच ने है इसका नहीं ही सुना, और वही का मतलब निश्चित रूप से उसने सुना ही नहीं, सचपच निश्चित रूप से उसने सुना ही नहीं। क्या नहीं सुना? सुतस्य रुदंतम सा का मतलब यशोदा ने अपने बेटे के रोने के आवाज को सच निश्चित रूप से सुना ही नहीं। सुनती तो उसका बेटा प्राण, उसका प्राण ही बेटा था, वो कभी भी सुनती तो उसको भूलती नहीं, उधर भाग के चली जाती, लेकिन उसने सुना ही नहीं, निश्चित रूप से नहीं सुना। तो बच्चे ने क्या किया? और बच्चा क्यों रो रहा था? स्तन अर्थी, माता का दूध पीने के लिए रो रहा था। रुदंतम, रो रहा था। क्यों रो रहा था? मां के दूध पीने के लिए। क्या कर रहा था रोके? चरणाव, अपने चरणों को उदक क्षिपित, क्षिपित कहते हैं उछालना, जैसे गेंद को उछालते हैं ना, वो गेंद वो क्षिपित, तो अपने दोनों पांव को उछाल रहा था। जैसे बच्चा रो रहा है ऐसे दोनों पांव को उछाल रहा था। तो इस श्लोक में दो भाग है, एक भाग में यशोदा मैया की मेहमानों के आदर के प्रति जो तलीनता है और उदारता से उत्सव मनाने का भाव है वो है, और दूसरे तरफ उसका अपने पुत्र में जो स्नेह है उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसने सुना ही नहीं और बच्चा रो रहा था। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद को सुन लीजिए, प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य। उत्थान उत्सव मनाने में मगन, उत्थान उत्सव मनाने में मगन, उदार माता यशोदा, मगन उदार माता, उदार माता मनस्विनी, मगन का मतलब बड़ी उत्साह में भरी हुई थी। मेहमानों का स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गौएं, मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी, वो कार्य में लगी हुई थी। अतः बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था, अतः क्रोध में आकर वो अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। क्यों भगवान पांव ना, भगवान को भूख लगती है क्या? भगवान आत्मा राम है, वो को भूखे हैं, सबको खिला रहे हैं, वो कोई भूखे हैं, उनको कोई दूध की जरूरत है नहीं, तो वो ऐसे क्यों कर रहे थे? तो अब प्रसंग आता है, असल में इसके बाद का प्रसंग ये है कि जिस शकट के नीचे, छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे, आपको परसों बताया था कि बैलगाड़ी 5 हाथ की थी, ताल वृक्ष जितनी बड़ी थी, उसके ऊपर खाली और दूध दही भरे हुए बर्तन रखे हुए थे, उसके नीचे बहुत जगह थी, और वो इनके घर में हमेशा रखी हुई थी। ऐसे नहीं कि उस दिन लाए थे, जैसे कोई सामान रखने की जगह होती है, घर में मंच बना हुआ था, वैसे लकड़ी की बनी हुई थी। और माता ने देखा कि घर में बड़ा शोर होगा, इतने सारे लोग आए हैं, तो बच्चे को अगर घर में सुलाएंगे तो जाग जाएगा, अब इसको थोड़ा बाहर एकांत में वहाँ सुलाते हैं, और माताओं के साथ जो बच्चे आए हैं उनको उसके पास बिठा देती हैं, अगर रोएगा तो ये बुला लेंगे, तो इसलिए उसको बाहर सुला दिया था। नहीं तो कौन कहेगा कि घर से बाहर किसी ठेले के नीचे बच्चे को थोड़ी सुलाया जाता, लेकिन अपने घर के आंगन में ही ऐसा रखा था। अब भगवान ने रोया क्यों, रोने का तो बहाना किया, पांव क्यों उछाले? तो उस छकट के अंदर एक असुर कंस का भेजा हुआ, जिसको वरदान था अथवा जिसको शराप था कि वो किसी को दिखाएगा, दिखाई नहीं देगा, और हवा में जिसमें प्रवेश करेगा उसी का रूप ले लेगा। वो खंभे में प्रवेश करेगा तो खंभा बन जाएगा, गाड़ी में प्रवेश करेगा तो गाड़ी बन जाएगा, गधे में प्रवेश करेगा तो गधा बन जाएगा। तो उसको किसी में भी प्रवेश करने और उस जैसा ही रूप धारण करने का, उसको गर्ग संहिता में इस शक्टासुर के पूर्व जन्म की कथा है, किसी को याद है? इसका नाम भी है, इसका नाम भी है, और पूर्व जन्म में इसको शराब से अदृश्य हवा के रूप में किसी में प्रवेश करके उसी का रूप लेने का योग्य, इसमें वो सिद्धि थी अथवा शराब था। अब नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन में से किसी ने सुना होगा तो गर्ग संहिता में शक्टासुर का नाम है कि पूर्व जन्म में इस नाम का यह असुर था, तो वो उसमें आ गया था, और वो इस विचार से आया था कि इसके नीचे ये सोया हुआ है, मैं इसको दबा के इसके नीचे मार दूंगा। और भगवान ने कहा अभी मैं सीधा असुर को मारूंगा तो अच्छा नहीं है, माँ के दूध के लिए रोने का बहाना करता हूँ, पांव उछालता हूँ, तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैंने पांव से मारा है असुर को, मैं तो माँ के दूध के लिए रो रहा हूँ। एक बार हम किसी खिड़की के ऊपर टिकट के लिए लाइन में खड़े थे, तो जो सबसे आगे खिड़की में था उसका सर जाके दीवार में लगा, तो पीछे मुड़ के कहता धक्का क्यों दे रहे हो? उन्होंने बोला धक्का हम तो नहीं दे रहे हैं, हम लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, हमारे पेट से तुमको धक्का लग गया, हमने तो हमारे सांस लेने से तेरा सर फूटता है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत भीड़ में, ज्यादा लंबी लाइन में भीड़ होती है ना, तो भीड़ में सांस लेने से एक तो लेना सांस मुश्किल, सांस लंबा लिया तो उसका सर दीवार को लग गया। तो भगवान ने ऐसे ही माँ के दूध पीने के लिए पांव उछाला और शक्टासुर का मृत्यु हो गया, तो इसमें भगवान का क्या दोष? भगवान उसको मारने के लिए तो नहीं किया था, वो तो अपने लिए। अब ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है कि माँ ने बाहर सुलाया क्यों? बोला योग माया ने ये सब योजना बनाई। जो भी कृष्ण की लीला है वो योग माया करती, उसका सारी व्यवस्था योग माया करती। नहीं तो यशोदा और रोहिणी के सामने पूतना एक बाहर की अनजान स्त्री है, उसको स्तनपान करने के लिए क्यों देती दोनों माताएं? क्योंकि योग माया को ऐसी व्यवस्था करनी थी कि भगवान की लीला हो सके। आज कृष्ण को बाहर सुलाना, पहला ही दिन बाहर निकालने का है, उत्सव के बाद ही बाहर निकालना है। योग माया ने सक्तासुर के उद्धार के लिए माया को प्रेरणा, माता को प्रेरणा दी कि इसको बाहर सुलाया जाए। और सक्तासुर उसमें प्रवेश जब कर गया, और बच्चा अभी तो अगले श्लोक में सोया है और दूसरे श्लोक में जाग भी गया, ये तो अभी छठे श्लोक, पांचवे श्लोक में सोया है, छठे श्लोक में जाग गया। और माँ के स्तन पीने, और माँ ने सुलाया तो स्तन पिलाके पिलाते पिलाते सुलाया, तो ऐसा कोई उसको भूख लगी ये बात नहीं है। लेकिन भगवान ने पांव हिलाया और पांव भगवान का बड़ा भी नहीं हुआ। पांव भगवान के पांव कितने कोमल है, नलीन, गोपियां कहती हैं कमल की, कमल जो नीले कमल है उससे भी ज्यादा कोमल पांव है आपके, वो इतने कोमल पांव हैं। उन पांव को छकड़े के एक्सिल के पास, जहां जहां पहिया था उधर पांव का केवल स्पर्श मात्र हुआ और छकड़ा धराम से नीचे गिरा, सारे बर्तन नीचे गिरे। अब लिखा है कि बच्चे के दूध, बच्चा दूध मां के दूध पीने के लिए रोया और पांव उछाले क्रोध में। इससे ज्यादा सुखदेव महाराज कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन आचार्यों को भगवान ने प्रेरणा दी के लिखो कि एक तो भगवान ने कहा देखो मैं हूं रसराज, कृष्ण रसराज है, सारे रसों का राजा मैं हूं, तो राजा को ऊपर बैठना चाहिए कि गौ रस को ऊपर रखना चाहिए? ये गाय का दूध दही मक्खन ये गौ का रस है ना, और मैं रस राज हूं, मुझे नीचे मेरे ऊपर ये, इनको नीचे गिराना ही चाहिए, ये गाय के लिए मेरे ऊपर रखे हैं। रसराज के ऊपर गौ रस रखना ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। और सक्तासुर आया था, उसका भी उद्धार करना था, ये सारे असुरों का उद्धार करना था। और इस सक्तासुर को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आलस की, ये आलस दोष है, ये आलस का दोष है, आलसी आदमी दिखाई पड़ा रहे और वो जड़ में जाके बैठ गया, चेतन होते हुए जड़ छकड़े में चढ़ा गया, लकड़ी के अंदर जाके बैठ गया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण घरेलू छकड़े के नीचे लिटाए गए थे। घरेलू छकड़े का मतलब है हमेशा वहां पड़ा था, ऐसा नहीं है कोई ठेले वाला बाहर ठेला खड़ा कर गया उसके नीचे सुला दिया, ऐसा नहीं था, वो घर में पहले से रखा हुआ था, वो घर की सामग्री था। किंतु ये छकड़ा वास्तव में सक्तासुर का अन्य रूप था, वास्तव में इस छकड़े में सक्तासुर ने प्रवेश किया था, उसको अदृश्य होके किसी भी जिस चीज में प्रवेश करे उसका रूप धारण करने का सामर्थ्य था, तो इसमें प्रवेश किया था। ये असुर बालक को मारने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने अपनी माता का स्थान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। तो दूध पीने की इच्छा नहीं थी, असुर आया था किसी ने देखा नहीं, वो मारने के लिए आया था। ये देखो भगवान और भगवान के भक्त, इनके ऊपर कोई असुर मारने आता है तो असुर मरता है, इनके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र चलाते हो तो वो अस्त्र घूम के वापस उसी को मारता है जो भेजता है। ये भगवान की चमत्कारी लीला सदा होती है, जो भगवान को मारने आता है वही मरता है, जो भक्त को दुख देता है वही दुखी होता है, ये भगवान की लीला है। ऐसे बहुत से जड़ भर्त का उदाहरण है, मारने के लिए उसको बलि चढ़ाने देवी को गया और देवी के ने अपने ही भक्त का गला काट दिया और जड़ भरत को छोड़ दिया। मारने जड़ भरत को गए थे, बलि चढ़ा रहे थे देवी को, और देवी का भक्त ही बलि चढ़ा रहा था डाकू, लेकिन देवी ने कहा भक्त को कैसे मार सकती हो, मारने मेरे आंखों के सामने कैसे मार दूंगी, ये वैष्णव है, मैं वैष्णव ही हूं, तो ये दुष्ट है जो मेरा भक्ति कर रहा है, लेकिन ये तो भोग के लिए भक्ति कर रहा है। तो देवी ने मूर्ति से प्रकट होके हाथ से उसकी तलवार लेकर और उसी डाकू को ही मार दिया। तो ऐसे जब भी कोई भगवान के पास असुर मारने को आता है या भक्तों को कोई संकट पहुंचाने आता है तो भगवान की ऐसी लीला होती है कि वो आने वाला ही मरता है। न भगवान तो मर नहीं सकते और भगवान के भक्त का भी अहित हो नहीं सकता। छंड और अमरक ने एक कृत्या बनाई थी प्रहलाद को मारने के लिए। कृत्या का मतलब राक्षसी, अपने मंत्रों से। वो प्रहलाद के पास गई, प्रहलाद तो गोविंद गोपाल गा रहा था, तो उसको तो मार नहीं सकी, वापस आई और छंड और अमरक को मार दिया। क्योंकि कृत्या का, ये कृत्या का नियम होता है, बनाने वाला जिस काम के लिए बनाता है वो पूरा नहीं करेगी तो जिसने बनाया उसको मारेगी। और प्रहलाद को जब ये पता लगा कि मेरे गुरु के बच्चे मर गए हैं और मेरे कारण मरे हैं, क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे, वो मैं मरा नहीं और वो मर गए, तो प्रहलाद जी कहते हैं जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे हाथी के पांव के नीचे डाला, जिन्होंने मुझे पहाड़ से फेंका, जिन्होंने मुझे समुद्र में डुबाना चाहा, उनके प्रति अगर मेरे हृदय में न क्रोध और रोष और द्वेष नहीं हुआ हो तो मेरे गुरु के बच्चे जीवित हो जाए, और वो दोनों वापस जीवित हो गए। तो मारने वाले को भी भगवान और भगवान के भक्त तारते हैं। जिस जिस को भगवान ने मारा वो सब तर गए, उनका उद्धार हो गया कि नहीं हो गया। तो भगवान और भगवान के भक्त से किसी का अहित नहीं होता, संत किसी का अहित नहीं करता, भक्त किसी का अहित नहीं करता, कभी नहीं करता। भरत महाराज भगवान रामचंद्र को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो देवता आकाश में परेशान हो गए कि भरत जैसे भाई को ना नहीं करेगा राम जी, और राम जी लौट के आए तो हमारा काम नहीं होगा, रावण मरेगा नहीं, तो हमारे देवताओं के काम में बाधा पड़ेगी। तो देवऋषि नारद ने कहा देवताओं भरत के रास्ते में कोई बाधा मत डालना, नहीं तो भगवान अपराध इसकी क्षमा नहीं करते हैं भक्त के रास्ते में बाधा डालने के ऊपर। बोला फिर राम जी वापस आए तो हमारा काम नहीं होगा। बोला भरत संत है, इसके हृदय से किसी का अहित नहीं होगा, आपका भी अहित नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अहित नहीं कर सकता है, आपका काम में रुकावट नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये संत है। कितना महान संत है, भागीरथ सूर्य वंश में महान है कि गंगा को धरती पे लाया, उससे महान महाराज दशरथ है जो रामचंद्र को धरती पे लाए। ये कौन कह रहा है? भारद्वाज ऋषि कह रहा है। फिर कहते हैं मैंने जो तपस्या की थी, जो जप तप किया था, उसका फल मुझे राम जी का दर्शन मिला। लेकिन राम जी के दर्शन का फल ये है कि मेरे को भरत का दर्शन मिला है। भगवान के दर्शन का फल ये है कि मुझे भक्त का दर्शन मिला। वैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल बहुत कोमल हैं, ब्रज में कभी बिना जूते पहने घूमे, अनावृत चरणों से घूमे हैं, कभी कांटा लगने का कहीं कोई उल्लेख नहीं। राम जी वनवास में जा रहे थे चित्रकूट की तरफ प्रयागराज से, तो सीता माता के पांव के चरण में कांटा लगा और कांटा दूसरी तरफ बाहर निकला, इतना धड़ाम से नीचे गिरी हाय राम करकर। राम जी ने तो गोद में ले लिया और भरत कांटा और लक्ष्मण कांटा निकालने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी की ओर देख के क्रोधित हो गए, हे पृथ्वी पृथ्वी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज अभी इस रास्ते में कोई कांटा नहीं आएगा। राम जी ने कहा कि सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने दो, नहीं तो पतिव्रता धर्म का पता नहीं लगेगा, मुझे इस बात के ऊपर क्रोध नहीं है। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए वन में तो आने दो, क्योंकि सेवक के धर्म का लोगों को पता नहीं लगेगा बिना संकट खाए। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने दो, क्योंकि नायक का पता नहीं लगेगा, राजा का पता नहीं लगेगा जब तक प्रजा के दुख का पता नहीं लगेगा। लेकिन पृथ्वी भरत साधु है, अगर इस रास्ते से कभी आए तो उसको कांटा नहीं लगना चाहिए। तो पृथ्वी माता हाथ जोड़ के कहती है साधु को कांटे की क्या परवाह। बोला साधु को कांटे से दुख नहीं होगा, उस वक्त वो सोचेगा कि राम सीता को कांटा लगा होगा इस रास्ते में, वो पीड़ा सह नहीं सकेगा, अपने पीड़ा का नहीं राम सीता की पीड़ा को नहीं सह सकेगा। और ये कहा लिखा है कि जब भरत जा रहा था तो आकाश में बादल थे, गर्मी तक नहीं थी, वो छाया से जा रहा था और रास्ता कोमल हो गया था, इतना भगवान ने पृथ्वी को ये आदेश दिया था, पत्नी है भगवान की। तो संत से कभी किसी का अहित नहीं होता, भगवान किसी को मारता नहीं है, जिसको मारता है उसको भी तारता है। भगवान का मारना ऐसे है जैसे कोई माली बगीचे के अंदर किसी पौधे को काटता है तो उसके हित के लिए काटता है, और किसी में खाद डालता है तो उसके हित के लिए डालता है, पानी देता है तो उसके हित के लिए देता है। माली खुद ही बगीचा लगाता है तो उसमें काटता है, छांटी करता है तो भी उसके हित के लिए करता है। ऐसे भगवान तो इस सृष्टि का अगर सृजन करने वाला है, उसी ने बनाई है, तो वो जो करता है उसका हित ही करता है। तो भगवान से और भगवान के भक्तों से किसी का अहित नहीं होता। तो शक्रासुर आ गया था, भगवान ने स्तन पान करने का बहाना किया, क्योंकि बच्चा है यही बहाना चलेगा। रोया क्यों? बोला मां का दूध पीने के लिए रोया। लेकिन सिद्ध क्या होता है, 3 महीने का कृष्ण भी उतना ही परिपूर्ण शक्तिशाली है, उतना ही सर्वज्ञ है, सब जानता है कि शक्रासुर इस सकते में किसी को पता नहीं, लेकिन भगवान जानता है। 3 महीने का है तब भी भगवान भगवान है, और 6 दिन का है तब भी भगवान भगवान है। तो भगवान छोटा बड़ा या भगवान की शक्ति कम ज्यादा नहीं होती, वो भगवान सदा ही भगवान होता है। और भगवान को कुछ याद करने के लिए ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही सब पता लगता है। साधु संत महात्मा जब त्रिकाल दृष्टि है वो ध्यान करते हैं तब पता लगता है, लेकिन भगवान को कुछ करना नहीं है, सब पता अपने आप स्पष्ट रहता है। फिर भी भगवान की योग माया भगवान को भी कभी कभी भुला देती है लीला करने के लिए। सारा लीला भगवान ने ही बताई हुई है, लेकिन योग माया प्रभाव से भगवान भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल लीला के लिए। लेकिन जब लीला बनाई उन्होंने, कहते डायरेक्टर वही है, लेकिन जब ड्रामा करता है तब अपने आप को भूल जाता है। उन्होंने शक्रासुर को लात मारी जिससे सारा भेद खुल जाए। शक्रासुर को भगवान ने पांव को उछालते हुए लात मारी, प्रभुपाद ने कहा। असल में लात मारी ऐसा भी नहीं लिखा है कि भगवान का पांव कोई वामन देव की तरह बड़ा भी नहीं हुआ, नरसिंह देव की तरह कोई उसका बड़ा नाखून जैसे तेज हो गए पांव के और छुरी बन गई, ऐसा भी नहीं हुआ। जैसा था पांव ऐसा शक्रासुर को स्पर्श किया। एक भी असुर वृंदावन में ब्रज में भगवान ने अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, एक भी असुर ब्रज में अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। पूतना को होंटों से 6 दिन के चूस के प्राण निकाल लिए, शक्रासुर को चरण लगा दिया, तृणावर्त का गला दबा दिया, वत्सासुर के घुमा के पटक दिया, बकासुर के दोनों चूंच उखाड़ दो टुकड़े करके फेंक दी, केसी के मुंह में हाथ डाल दिया। किसी को भी कोई सुदर्शन चक्र से मारा हो, किसी को बाण मारा हो, गदा मारी हो, ऐसा नहीं। ये तो बाल लीलाओं में सब खेल खेल में सब मारे हैं। ये तो हम सत्संग कहते हैं ये मामा कंस खिलौने भेजता था और भगवान के पास ये मामा कंस के खिलौने चाइना जैसे थे, चलते नहीं थे। वो जैसे कोई भी खिलौना आए तो वो दो दिन में तोड़ दे, दो दिन क्या, दो मिनट में तोड़ देता था। ये सारे खिलौने आए थे, ये तो गाड़ी के रूप में खिलौना आया था, पूतना आकाश मार्ग से आई थी, त्रिणावर तो ऊपर हेलीकॉप्टर भेजा था मामा ने के घुमा के, इसको देखो बहना बांजे। और जो 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 आया खिलौना सबको तोड़ दिया। इसका मतलब भगवान के सामने कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली राक्षस हो तो ही तिनके के बराबर भी नहीं, तिनके के बराबर नहीं। और ऐसा भगवान अगर कहते हैं कि मैं भक्त की रक्षा करता हूं, नमे भक्त प्रणशति, तो भक्त को निर्भय होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भगवान का तो कोई कुछ बाल बांका कर नहीं सकता है, तो भगवान के और भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त का भी कोई नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं? और कृष्ण ने ये कहा है, अगर और कोई कहता तो नहीं मानते, कृष्ण ने कहा है, और उसने इतने सारों को बचपन में ही मार दिया है, तो बोर कौन बड़ा होगा, क्या क्या बिगाड़ेगा हमारा? कोई कहते ग्रह होते हैं बड़े भारी, सब ग्रह भगवान श्री कृष्ण के, सबसे बड़ा खतरनाक ग्रह शनि है, भगवान का साला है, वो जमुना का भाई है, वो जमुना माँ भगवान की पटरानी है, भगवान के भक्त को क्या करेगा भगवान का साला, हम माल खिलाएगा और क्या करेगा, खुश हो जाओ, खाओ पियो, मौज करो। सारे ही ग्रह भगवान के रिश्तेदार हैं, सेवक हैं। तो भगवान के भक्त को यहां से ये सीखना है कि जब बड़े बड़े असुर भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कितना बड़ा हमको विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास नहीं होता तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में बिना किसी सहायता के, न धन की सहायता न मानव की सहायता के, ऐसे पाश्चात्य देश में जाने का साहस नहीं करते। कितना उनके अंदर निडरता थी, निर्भयता थी, अभय था, नाम ही अभय चरण था, और उनकी अभयता असीम थी। कहीं किसी को जानते नहीं है, वहां ऐसे जाके उतरना। तो ये विश्वास भक्तों के अंदर आना चाहिए कि हम कृष्ण परंपरा से कृष्ण का शरण लेने के रास्ते में चले हैं, तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट कृष्ण आने नहीं देगा, और निश्चित रूप से जो करेगा हमारे हित में ही होगा, ऐसा विश्वास पक्का होना चाहिए इन लीलाओं से। और आलसी नहीं होना चाहिए। ये शक्टासुर आलस का प्रतीक है, सोए हुए कृष्ण को मारने के लिए आया था, कि नीचे बच्चा है, सोया हुआ है, 3 महीने का है, मैं दबा के इसको मार दूंगा। तो भगवान ने उसको लात मार के उसका भेद खोल दिया। भेद खोल दिया का मतलब ये सरेआम खुले है। भगवान से लड़ने के लिए कोई भी असुर भगवान से लड़ने के लिए सामने आके ललकारा नहीं, चुनौती नहीं दी, सारी किसी न किसी रूप में वत्सासुर बछड़े के रूप में आ गया, धेनुकासुर गधे के रूप में आ गया, अघासुर एक अजगर के रूप में आ गया। तो इसका मतलब है कि भगवान के सामने तो आके लड़ने के लिए आए ही नहीं, तो उनका भेद खोलना कि ये असुर है। भगवान ने जब बैल रूपी असुर वृष्ठभासुर को मारा, तो गोपियों ने भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया कि आप धर्म के रूप बेल को मारा है, हमको हाथ मत लगाना। अरे कृष्ण कहता है मरने के बाद देखो कितना बड़ा भयानक असुर है, ये बेल के रूप में आया। बोला कैसे भी है, था तो बेल के रूप में ना। इसका मतलब देखने के बाद भी, भेद खोलने के बाद भी कोई वो असुर ऐसा। वत्सासुर को भगवान ने मारा तो कहा कि अब सब तीर्थों में स्नान करो, ग्वाल बाल गया। और भगवान ने वेणुकूप बनाया, एक अपने वेणु से कुआं खोदा, जो कहाँ है, भांडिर वन में जो कुआं है वो वेणुकूप है, त्रिवेणी कूप उसको कहते हैं, त्रिवेणी कूप कहते हैं। वो भगवान ने वत्सासुर को मारने के बाद उसका वहां प्रकट किया। तो ये सारे असुर कैसे आए हैं, उसका भेद खोलना था, और किसी को पता नहीं लगा कि अभी छकड़े के अंदर कोई असुर आ गया है। और एक और भगवान की लीला को कहते हैं निरोध लीला। निरोध का मतलब है कि सबको अपनी ओर आकर्षण करे और सब अपने काम को भूल जाए। तो इस लीला में भगवान ऐसे करने जा रहे हैं कि सारों को उत्सव का खाना पीना नाचना कूदना भूल गया और सभी भागते हुए वहां आए जहां कृष्ण ने यह लीला की थी। तो सबको निरोध कर दिया, सबका निरोध कर दिया मतलब सबको अपनी ओर आकर्षित कर दिया, उनका आकर्षण कहीं नहीं रह गया। तो कुछ लोग इसको निरोध लीला कहते हैं। निरोध लीला का मतलब सबके लिए संसार सब भूल गए और केवल कृष्ण ही केंद्र बन गया। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी किंतु भगवान कृष्ण शक्तासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। क्यों मारा? बोला अच्छा, असुर को मारना उनका उद्देश्य था? बोला नहीं। बोला उद्देश्य क्या था? बोला करवट मैंने बदली, सर मैंने उठाया, उत्सव मेरा, मेरे को बाहर छकड़े के नीचे सुला के अंदर माल खा रहे हैं। उत्सव मेरे नाम का और मेरा नाम निशान नहीं, और मेरे को बाहर बिठा दिया, अब सबको सबको यहां बुला लेता हूं। भाई मेरे लिए आए तो मुझे देखो ना, कहां तुम समोसे देख रहे हो। भाई आना तो मेरे लिए आई हो ना, तो मेरे को तो देख नहीं रही हो, मेरे को सुला दिया और बाकी खाने में लग गए। तो भगवान ने उन सबको अपनी ओर आकर्षण करना चाहा, क्योंकि वो आई भगवान के लिए है। तो भगवान ने असुर को मारा, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो ऐसे ही मुझे पांव लग गया, मर गया, मरने तो आया था। कंस को भगवान ने मारने के समय मंच के ऊपर कंस बैठा था, भगवान कंस के ऊपर कूद के ऊपर चढ़ गए तो कंस उठ के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा अच्छा है, स्वागत तो किया, मामा ने स्वागत किया है, अच्छा मामा ने स्वागत किया, अच्छा है मामा ने स्वागत किया, क्योंकि भगवान के आने के ऊपर उठ के खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। तो खड़ा तो हो गया, खड़ा होने के बाद तलवार निकालने लगा, तब तक भगवान ने उसके बाल को पकड़ लिया, और बाल तो बड़े रखा था क्योंकि फैशनेबल था। कंस ने बड़े बड़े लंबे बाल थे, और भगवान ने झटका दिया, उमन से नीचे गिरा, और गिरा तो भगवान कूद के उसकी छाती के ऊपर जैसे बैठे उसका हार्ट फेल हो गया। भगवान ने मुक्का ऊपर किया तब तक वो मर गया। अब कहा कि मामे को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, हार्ट फेल हुआ, ऊपर से नीचे गिरा है, मैंने इसको मारा नहीं, मैं तो मामे को गले मिल रहा था लेकिन हाथ में बाल आ गए, बच्चा तो बाल भी पकड़ सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। कितनी नौ उम्र क्या थी कृष्ण की? 11 साल। तो ऐसे सब अपने आप मर गए, अपने ही कर्मों से मर गए, भगवान ने तो केवल लीला की। तो भगवान को यह दिखाना था। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो कथा को विराम दें। कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं का मतलब क्या है? हमारे मन को आकर्षण करने वाली हैं। सब कामों को भुलाकर, खाने को पीने को सोने को भुलाकर अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। कृष्ण की लीला ऐसी ही है, वे अपनी माता का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पाद खड़ा कर दिया जिससे सामान्य लोग समझ नहीं सके। वो सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते लेकिन करने के लिए वो छकड़े को ही गिरा दिया, तो सब लोग ने कहा इतना बड़ा आतंक कैसे हो गया यहां। ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद देने वाली हैं। ये कथाएं अद्भुत और आनंद देने वाली हैं। और जो भाग्यशाली हैं वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो भाग्यशाली हैं वो इन लीलाओं का सुख लेते हैं। और फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथाएं समझते हैं, मानते हैं, हमको ये लीलाएं आनंद देती हैं और सामान्य लोग कहते हैं इसमें क्या टाइम खराब कर रहे हो, छकड़ा कभी लात मारने से गिरेगा, 3 महीने की लात मारने से इतना बड़ा ताल वृक्ष, इतना लकड़े का छकड़ा गिरेगा, ए दंत कथाएं हैं, मिथ्या कथाएं मानते हैं। प्रभु कहते क्यों मानते हैं मिथ्या, ये मिथ्या क्यों मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ उनकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ होता है, भूसा भरा होता है, गाय का दूध पीते नहीं है, उसका दिमाग विकसित होता नहीं है, भैंस का दूध पीते हैं इसलिए भूसा भरा हुआ है किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं, ये कथाएं वास्तविक हैं, ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबुद्ध करने वाली हैं कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया और उन्हें उनके चरण चिन्हों में चलते चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं का को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर ये ऐसे ही कथा बेकार होती तो राजा पृथ्वी का परीक्षित और सुखदेव जैसा ब्रह्म आनंद में प्रतिष्ठित व्यक्ति इन कथाओं को कहने और सुनने में समय क्यों गंवाते। लेकिन जैसे राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज ने इसमें आनंद लिया, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमको लिखने में आनंद आ रहा है और हमारे भक्त पढ़ते समय इसमें आनंद लेंगे, सुनते समय इसमें आनंद लेंगे, और जिसके माथे में भूसा भरा हुआ है वो इसको समझ नहीं पाएगा। अब बताओ आपके माथे में, हाँ, हर ये कथाएं बड़ी रोचक हैं, आनंद देने वाली हैं, हर बार इसमें आनंद आता है, तो ऐसी कथाओं में सुख लेना चाहिए, ये वास्तविक भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की एक लीला होती है वास्तविक, वो नित्य है, आज भी हो रही है, एक व्यवहारिक लीला होती है जो अवतार काल में होती है, ये अवतार काल की लीला है, ये अवतार काल की लीला है, लेकिन ऐसी लीलाएं भगवान की निरंतर होती रहती और ये आचार्यों के हृदय में जो है स्फुरित होती रहती, तब वो इनको प्रकाशित करते। तो अब ये सट्टासुर नीचे गिरा, सब लोग आएंगे और आते ही पहले कहेंगे छकड़ा छकड़ा किसने गिराया, कैसे गिरा। और जो छोटे बच्चे खड़े थे ना, वो बच्चे कहेंगे इतने लात मारी क्योंकि उनने देखा था ना, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, और सब कहेंगे इसकी लात से छकड़ा गिरेगा, अरे बच्चे हैं, अरे बच्चे सच बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं माना और माता यशोदा ने कुछ नहीं किया, एकदम बच्चे को उठाया और दूध पिलाया, अरे दूध पी रहा है, भगवान ने मेरे बच्चे की रक्षा की, वो भगवान की प्रार्थना करके और फिर ब्राह्मणों को दान देने लगी। तो इस तरीके से ये लीला इतनी यहाँ पूरी हो जाती है, फिर एक साल के भगवान हो जाएंगे तब भारी हो जाएंगे, तो तब तृणावर्त आएगा, तो इस बीच में थोड़ी सी ये लीला आगे चलेगी, फिर दूसरी लीला तृणावर्त की शुरू हो जाएगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? सक्टासुर हरि श्री कृष्ण की जय। बोलिए बोलिए जी, कुछ बोल रहे हैं क्या भैया? हाँ जी,
ये जो कई बार जो है ना, ओम श्री कृष्ण, आपको प्रणाम करता हूँ, सब भक्तों को प्रणाम करता हूँ। ये कई बार तो है कथा पात्र को कथाएं करते हैं ना, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि भाई वो नंदू गोपाल को नहलाती थी प्रतिदिन, तो उसको भी कहीं दूसरे गांव जाना पड़ गया, पुत्र वधु को बोला बेटा तू इसको नहला देना और ये मुस्कुराएंगे नहाने के बाद, तो उन्होंने क्या है कि उसको नहलाया तो नहीं मुस्कुराए, फिर दोबारा तिबारा चार पांच बार मिलाया, तो कहते हैं कि भाई ठाकुर जी ने सोचा यार ये मुझे ठंड में खाती रहेगी और मुश्किल पड़ेगा। तो ये देखो कहने सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर वैदिक रीति से देखा जाए ना, तो हमारे ठाकुर जी जी ऐसे तो छोटी छोटी बातों पे, और जो है वो भी जो है चेतन रूप में तो है नहीं, जड़ रूप में है, तो जड़ रूप में ऐसे चेतन में हो जाना, तो ये थोड़ा सा इसमें अतिशोक्ति भी हो गई, तो इन चीजों का आसरा लेके और एक पाखंड और एक इस टाइप का वो क्यों ठगों को एक आश्रय मिल जाता है कि हम इनको ठगना फिर आसान है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात चलनी चाहिए?
पहले तो भगवान जड़ और चेतन है नहीं, ये विशेष साक्षात भगवान है। जो भक्त सिद्धि को प्राप्त किया है वो इसको साक्षात भगवान मानता है, और जो अभी तक नया भक्त है वो इसको मूर्ति मानता है। और आपके हृदय में जैसे भाव है वैसे भगवान आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर आपके हृदय में श्रद्धा है तो भगवान मुस्कुराते भी हैं। अब भगवान को रोज यहाँ देखो, रोज आपको अलग अलग भाव में दिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भाव होना चाहिए। कथाकार अगर बेईमानी भगवान की लीला के बहाने पैसा लेता है तो ये उसका दोष है, इसमें भगवान की लीला का दोष नहीं है। एक छोटे लड्डू गोपाल को गोपी एक महात्मा लड्डू गोपाल को झोले में लेके घूमते थे, वो जमुना में स्नान करके बाहर ठाकुर जी को बिठा दिया। गोपियों ने कहा ये मूर्ख संत झोले में बिठा बिठा के इसको टेढ़ा कर दिया है। उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल को मालिश किया और सीधा हो गया। अब गोपियों ने हाथ लगाया तो सीधा हो गया। महाराज बाहर निकल के कहता है मेरा लड्डू गोपाल कहाँ गया? अरे वो तो ऐसा टेढ़ा था। बोला टेढ़ा था लेकिन अब टेढ़ा नहीं रह गया, तुमने इसको झोले में डाल के टेढ़ा कर दिया। ये तो बहुत सीधे हैं वैसे। तो क्या है कि ऐसा ऐसी है कि कौन कौन से भक्त है जो भोजन पिताजी गए और उसने भोजन खिलाया तो हाथ में लड़ा। मुकंद उनके पिता, एक और लड्डू उसका लड्डू गोपाल आधा लड्डू हाथ में लेके अभी खड़े हैं, और एक महाराष्ट्र में है। तो ऐसा उदाहरण कोई घरों में नहीं होता है, ये बड़े महात्माओं के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं। भगवान जड़ नहीं होता है, हमारी जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि हमारी होती है, लेकिन कथाकार ऐसी कथाएं सुनाकर लोगों को चमत्कार के नाम में कुछ पुरस्कार लेना चाहते हैं वो अच्छा नहीं। लेकिन भगवान कोई भी लीला कभी भी कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं साक्षी गोपाल यहां से चले गए इसके बाद कोई चले गया गए गया, वो अभी वहां ठाकुर खड़े हैं साक्षी गोपाल वृंदावन से चले गए। तो भगवान चाहे तो खंभे से नरसिंह निकल सकता है क्या, इस मूर्ति से नहीं निकल सकता क्या? लेकिन इसके लिए विश्वास अटूट चाहिए और श्रद्धा चाहिए, और ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं ये ठाकुर जी हमारे हमसे बात करते हैं, हम प्रधान प्रार्थना करते हैं तो सुनते हैं, ऐसे ये साक्षात ठाकुर हैं। लेकिन इसके लिए उतना स्तर ऊपर होना चाहिए। कथाकारों के स्तर की बात नहीं है, ये अनुभव के स्तर की बात है, कथा का काम इसमें नहीं है। वो तो उसके लिए लिखा है भूसा भरा हुआ है। वो भूसा भरा हुआ है, उनको दिखावा करना है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपना नाम चमकाना है। भगवान तो इतना छोटा भी नहीं बनाया, अपना नाम बड़े इतना बड़ा लगते हैं ऊपर। ये धंधा चल रहा है भैया। हरे कृष्णा खाई देर से नहीं दो मुझे उसको दिन पता होता तो मैं था आप से 10 किलो घी ले जाता। आपने मुझे बताया नहीं। याद होते ही बच्चों को है, बड़ों को तो कुछ याद नहीं होता उनको। वो ठन गोपाल है बेचारे। असल में ये भक्ति नहीं है, ये है सोशल गैदरिंग्स। जैसे आपके बच्चे की शादी है, जन्मदिन है, आप किसी होटल में करें, कैसे करें, तो इनका ये आध्यात्मिकता भी सोशल गैदरिंग जैसा हो गया है। इसमें न कोई साधु होता है, न कोई संत होता है, न कोई संतों का सम्मान होता है। वहाँ तो धनी लोगों का सम्मान होता है, दिखावा होता है, ये एक सोशल गैदरिंग्स हैं, लेकिन धर्म के नाम में कर रहे हैं। कितने दिन चले, गणेश ने दूध पिया था, कितने दिन चला, खत्म हो गया। तो ये वाले चीजें है ना, ये अस्थाई है, इसके लिखा ये अध्रुव है और चल है, ये थोड़े दिन रहेंगी, ऐसे लोगों का काम भी थोड़े दिन रहेगा। और ये लोग एक दृष्टि से देखा जाए कि शास्त्र का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो असुरी प्रकृति के लोग हैं। पेड़ पे तो आज पपीता भी नहीं पकने देते हैं, बेर क्या पकने देते हैं। वो तो कार्बाइड डाल के पका लेते हैं। बात है कि जितने लोग कच्चे उतना काम कच्चा करते हैं, जितने लोग पक्के उतना काम पक्का करेंगे। आप लोगों को पक्का करना शुरू करो। कुछ आस्थाएं हैं, कुछ आस्थाएं लोगों की हैं, उसको कहते हैं लौकिक धर्म। ये सब लौकिक धर्म है, तो लौकिक धर्म आध्यात्मिक नहीं है, ये लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को लौकिक धर्म करके बंद करा दिया और गोवर्धन की पूजा करा दी, तो उस वक्त भी लौकिक धर्म चलता था, तो आज भी चले कोई बड़ी बात नहीं है। और चल ही रहा है और ज्यादा चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। और हम कितना भी सत्य बोले लेकिन वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि कलयुग उनके पक्ष में है और समय कलयुग का है। हमारे को प्रभुपाद के सिद्धांत के अनुसार उनको, जैसे भगवान ने सक्टासुर को सक्टा में प्रकट मतलब दिखाया कि ये बदमाश है, ऐसे इन लोगों को सावधान करना चाहिए कि आप आध्यात्मिकता कर रहे हैं लेकिन ये आध्यात्मिकता है नहीं, ये आपका व्यर्थ धन का और सामान का ज्ञान हो रहा है। आपको सही माना में करना है तो कोई भगवान का सुमरण करो, भक्ति करो, जिसमें अपना भी उद्धार हो, दूसरों का भी उद्धार हो। दिखावा ठीक नहीं, ये रजोगुण का है। वैसे लिखा है भागवत की कथा रजोगुण की होती है, तमोगुण की होती है, सतोगुण की होती है। जो कथा दिखावे के लिए की जाए वो रजोगुण की, और जितनी कथाएं और ये सब रजोगुण की। और जिस कथा में एक अध्याय पढ़ के एक स्कंद को कूद के दूसरी जगह चला जाए वो तमोगुण की कथा है। और सात्विक कथा ये है जिसको सावधानी से महीना एक पाक्षिक करे। निर्गुण कथा है जैसे हम कर रहे हैं यहाँ, ये भागवत एक श्लोक के ऊपर एक घंटा बैठ के आनंद से कथा करते हैं, ये निर्गुण कथा है, तीनों गुणों से ऊपर कथा है। सात्विक कथा भी नहीं हो रही है, जितनी कथाएं हो रही हैं सब राजसिक हैं और प्रायः तामसिक हैं, तो उसका प्रभाव भी राजसिक और तामसिक होगा। है देवता ही काम, लेकिन है रजो और तमोगुण के स्तर के ऊपर। भगवान कहते हैं भाई सुबह सुबह करो ना अपने अपने कर्म संसिद्धि लब्धे नारा। अपने अपने स्वधर्म के काम करने से वो शुद्धि संसिद्धि सम्यक सिद्धि प्राप्त करेगा। हाँ इसका मैं एक उत्तर देता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। अंग्रेज की शिक्षा हमारे दिमाग में भूसा भर दिया है कि जो चीज विलायती है वही अच्छी है, जो चीज देसी है वो खराब है। और उसका परिणाम ये है कि अभी तक, जैसे मैं आपको नाराज नहीं होना, आपको देख के कह रहा हूं कि आपकी अंग्रेजी ड्रेस पहनी हुई है, आप देसी काम करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। पहले आप अपने आप को देसी बनाइए, फिर आप देसी काम बात कीजिए। मैं एक बार कहा कि किसी 1000 साल के मुस्लिम शासन में इतना हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारे बड़े बुजुर्ग धोती और पगड़ी पहनते थे, और अंग्रेज के 200 साल में हमारी धोती उतर गई, हमारी पगड़ी उतर गई, हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो गया। तो जब तक हम ये अंग्रेजी वेशभूषा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारी चेतना कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती और अपनी चीज का हम महत्व जान ही नहीं सकते। ये हमारा अनुभव है। और हम जब से, हमने भी ये पहने थे, बहुत सारे ऑफिसों में भी पहन के गए, ऑफिसरी करके देखी, लेकिन जब ये पहने हैं तो बड़े बड़े मंत्री भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उसमें हमको उनको हाथ जोड़ना पड़ता है। हमने ये आंखों से देखा है, अनुभव करके देखा है। इसलिए हमारा तो पहले कहना है कि सारे पहले अपने वेशभूषा को पहनो और उसके बाद अपने काम को करो और अपनी पुरानी पद्धति पढ़ाई की वापस लाओ गुरुकुल की, जिसमें लोगों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाए। अभी भी हमारा कहना है धर्मी आदमी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आधे धर्मी हैं, पक्के नहीं, कच्चे हैं। हम तो चाहते हैं आप जो ये काम कर रहे हैं बड़े स्तर के ऊपर करना चाहिए। गायों की रक्षा होनी चाहिए, गायों के लिए घर घर में गाय होनी चाहिए, हर घर में चार गाय होनी चाहिए थी। अब कुत्ते घर में बंधे हुए हैं तो उनके बुद्धि कहाँ से है? ये कुत्ता बुद्धि वाले को समझाना बहुत मुश्किल है। आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इसको उत्साह के साथ करिए। गायों की सेवा करना भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है उसमें, इसको इसका लाभ लेना चाहिए लोगों को, इसको बड़े स्तर के ऊपर काम करना चाहिए। ग्रामीण लेवल पे इसको काम को शुरू करो, बड़े लोगों से बात करना, बड़े जैसे संतों का है ऐसे बड़े लोगों को भी सुधारना मुश्किल है। चाणक्य पंडित ने कहा कि रोटी को बीच से बच्चा खा रहा, माँ ने कहा नहीं किनारे से खाओ, उसने समझ लिया कि गाँव में जाके ये काम करो। गाँव वालों को 100 की बजाय 40 वाली चीज़ में उनके पास जरूरत पड़ेगी, और गाँव में ये चल जाए ना, गाँव गाँव तक ये काम करना चाहिए। हम भी गाँव में जाने में हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाँव में ये सब काम चल जाएगा। शहरों में कलयुग ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। हम तो रोज ही चल रहे हैं, आप चल नहीं रहे, हम तो चल ही रहे हैं। हम तो बिल्कुल चलने को तैयार, हम तो चल ही रहे, हम और क्या कर रहे हैं, हम तो आज इधर हैं कल किधर हैं, हम तो रोड पे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें पुरानी वैदिक आयुर्वेद में हैं, लेकिन बात यह है कि आयुर्वेद वाले भी धंधा चालू कर दिया, नाम पढ़ते हैं आयुर्वेद है और दवाई सारी एलोपैथी देते हैं, ये सब हम तो जानते हैं, उनको भी कोई अच्छी तरह से काम करे तो अच्छा है। क्या आपकी दवाई है, कथा के बाद लोग भूखे होंगे, भाग जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या शुभ नाम आपका? संजय। पहले श्लोक में कहा है, पहले क्या नाम है?
संजय
वाच। पहले धृतराष्ट्र है, माम का पांडवा से क्यों मकुर, तो संजय संजय वाच। अच्छा, दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुसुम आचार्य वचनम ब्रवीत पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ दुर्योत्पत्पुत्रेण तव शिष्येण धीमत्रात्र सूरा महेश वाचा भीमा अर्जुन समायुद्धे युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथादृश केतुचे कीतान कैशिराजस्य वीर्यवान कुंती भोज। अब हमको अभी तो नहीं हो रहा है, पहले मैं रोज रोज पूरी गीता को पढ़ता था, 700 श्लोक रोज पढ़ने का मेरा नियम था, अब थोड़े दिनों से नहीं हो रहा है।